हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास विषय विज्ञान के चैप्टर नंबर 11 जिसका शीर्षक है साउंड अर्थात ध्वनि, इसके दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले पहले भाग में हमने ध्वनि का संचरण, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण, जहां फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, वेग, तीव्रता, प्रबलता तथा कुछ गतिविधियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और अब हम विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, ध्वनि का परावर्तन, अनुरणन, ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग, सोनार, मानव कर्ण की संरचना और रडार जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं। आप अपने किताब के पेज नंबर 134 पर देखिए, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, इंग्लिश में इसे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया कहते हैं। ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, यह माध्यम के ताप पर भी निर्भर करती है। ध्वनि की चाल ठोसों में अधिक तथा गैसों में कम होती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। सामान्यतः 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि की विभिन्न माध्यमों में चाल सारणी 11.1 में दर्शाई है। अब यहाँ एक सारणी दी गई है, सारणी 11.1, जो विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल को दर्शाती है। इस चैप्टर के पहले भाग में हमने पढ़ा है कि ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पदार्थ का उपयोग करती है। ध्वनि जो कंपन है, वो कंपन किसी न किसी पदार्थ के द्वारा ही एक जगह से दूसरे जगह पहुंच पाता है, उसी पदार्थ को माध्यम कहते हैं। ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है और ध्वनि की चाल तापमान पर भी निर्भर करती है। यहाँ पर सारणी में ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जो पदार्थ ठोस हैं उनमें ध्वनि की चाल कितनी है, जो पदार्थ द्रव्य हैं उनमें ध्वनि की चाल कितनी है, और कुछ पदार्थ जो गैस है उनमें ध्वनि की चाल कितनी है, इसके उदाहरण और आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। मैं एक एक करके सबके बारे में पढ़ता हूँ। पहले हम ठोस अवस्था के उदाहरणों को पढ़ेंगे, और जो निम्नलिखित पदार्थ है वह है अल्मीनियम, और इसमें ध्वनि की चाल 6420 मीटर पर सेकेंड है। अगला पदार्थ है निकिल, जिसमें ध्वनि की चाल 6040 मीटर पर सेकेंड है। स्टील 5960 मीटर पर सेकेंड, लोहा 5950, पीतल 4700 मीटर पर सेकेंड। अब वो पदार्थ जो द्रव्य हैं उनमें ध्वनि की चाल को पढ़ेंगे। सबसे पहले समुद्री जल, जिसमें ध्वनि की चाल है 1531 मीटर पर सेकेंड। दूसरा आसुत जल 1498 मीटर पर सेकेंड। इथेनॉल 1207 मीटर पर सेकेंड। मेथेनॉल 1103 मीटर पर सेकेंड। अब हम गैस के कुछ उदाहरणों में ध्वनि की चाल को देखेंगे। सबसे पहला पदार्थ है हाइड्रोजन, जिसमें ध्वनि की चाल 1284 मीटर पर सेकेंड होती है। दूसरा हीलियम 965 मीटर पर सेकेंड, वायु 346 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन 316 मीटर पर सेकेंड, सल्फर डाइऑक्साइड 213 मीटर पर सेकेंड। यहाँ इस सारणी से जो जानकारी हमें मिलती है वो ये है कि अल्मीनियम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, परंतु जिन पदार्थों के बारे में इस सारणी में दिया हुआ है उसके हिसाब से एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा है, जो है 6420 मीटर पर सेकेंड, और सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर पर सेकेंड सबसे कम है। और भी बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं जिनमें ध्वनि की चाल ज़्यादा या कम हो सकती है। आप इसके बारे में ज़रूर पता करें कि ध्वनि की चाल किस पदार्थ में सबसे ज़्यादा होती है और ध्वनि की चाल किस पदार्थ में सबसे कम होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं, किताब को देखिए। ध्वनि का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव्य के पृष्ठ से परावर्तित होती है तथा परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका पालन प्रकाश करता है। ये नियम है, पहला, परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो ये दो नियम हमने प्रकाश के परावर्तन के समय भी पढ़ा है, या आपने जब भी प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा तब आप इसके बारे में जरूर पढ़े होंगे, परंतु यहाँ पर हम ध्वनि का परावर्तन पढ़ रहे हैं। और ध्वनि भी इन दोनों नियमों का पालन करती है। अब आगे पढ़ते हैं, गतिविधि 11.5। चित्र 11.16 की भांति दो एक जैसे पाइप लेकर उन्हें दीवार के समीप किसी मेज पर व्यवस्थित करते हैं। एक पाइप के खुले सिर के पास एक घड़ी अथवा अन्य ध्वनि स्रोत रखते हैं, दूसरे पाइप की ओर से ध्वनि सुनने की कोशिश करते हैं। जब ठीक प्रकार से समायोजित होने पर ध्वनि सुनाई देने लगे, तब इन पाइपों द्वारा दर्शाए अभिलंब के बीच के कोणों को मापते हैं। हम पाते हैं कि एक, जब पाइप दीवार के साथ बराबर कोण बनाते हैं, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर, तब घड़ी की ध्वनि सबसे अच्छी सुनाई देती है। दूसरा, जब दाईं ओर के पाइप को थोड़ा ऊपर उठाया जाता है तो घड़ी की ध्वनि अच्छी तरह सुनाई नहीं देगी। इस गतिविधि को हम ध्वनि के परावर्तन के नियम को पालन होते हुए देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, एक मेज पर दो पाइप लेना है, एक तरफ से किसी ध्वनि का स्रोत रखना है और दूसरी पाइप से उसे खुद सुनना है। इस तरह की गतिविधि आप अपने घर पर भी कर सकते हैं तथा जो नियम बताए गए हैं प्रकाश के परावर्तन में, उसकी जांच भी कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, प्रतिध्वनि, जिसे इंग्लिश में इको कहते हैं। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, किताब को देखिए। यदि हम किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे कोई इमारत, कुआं, पहाड़ी आदि के सामने जोर से चिल्लाएं, तो हमें कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि ध्वनि की चाल कमरे के ताप पर 350 मीटर पर सेकंड माने, तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की कुल दूरी 350 × 0.1 बराबर 35 मीटर की आधी अर्थात 17.5 मीटर अवश्य होनी चाहिए। ध्वनि के बार बार परावर्तित होने के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनियाँ भी सुनाई दे सकती हैं। क्या आपने कभी प्रतिध्वनि को महसूस किया है? क्या आप कभी कुएं में झांक कर या किसी हिल स्टेशन पर जाकर जोर से चिल्लाए हैं? अगर आपने ऐसा किया है तो आपने प्रतिध्वनि को जरूर महसूस किया होगा। प्रतिध्वनि का मतलब है एक ही आवाज़ का बार बार सुनाई देना, और ऐसा तभी हो सकता है जब ध्वनि का परावर्तन हो और ध्वनि का स्पष्ट परावर्तन होने के लिए, ताकि वह हमें स्पष्ट सुनाई दे, अवरोधक की दूरी स्रोत से कम 17.5 मीटर अवश्य होनी चाहिए। ध्वनि के बार बार परावर्तित होने के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनियां भी सुनाई दे सकती हैं। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय का अंतराल होना चाहिए। इसका उत्तर है 0.1 सेकेंड। इसे भी याद रखना है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अनुरणन, जिसे इंग्लिश में रिवर्बरेशन कहते हैं। किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है। यह बारंबार परावर्तन, जिसके कारण ध्वनि का अस्थायित्व होता है, अनुरणन कहलाता है। इसका मतलब है कि कोई भी ध्वनि जब किसी एक स्थान पर परावर्तन के कारण बहुत देर तक बनी रहे, तब उसे अनुरणन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी बड़े से हॉल में जब ध्वनि निकलती है या जब ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वह हॉल के दीवारों से टकरा कर उसी कमरे में बनी रहती है। उसे एब्जॉर्व करने के लिए कोई अगर मटेरियल नहीं हो, तो ध्वनि बार बार परावर्तन के कारण कुछ देर तक उसी कमरे में बनी रहेगी। और इसी वजह से सिनेमा हॉल में साउंड एब्जॉर्वर लगाए जाते हैं, ताकि ध्वनि का परावर्तन कम किया जा सके। या फिर अगर बड़ा सिनेमा हॉल हो तो प्रतिध्वनि भी कम हो सके। अब आगे पढ़ते हैं। ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग, यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। पहला, लाउड स्पीकर, हॉर्न तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले। इन यंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेजा जाता है। दूसरा, चिकित्सीय अनुसंधान में स्टेथोस्कोप एक महत्वपूर्ण यंत्र है, जिसका उपयोग डॉक्टर द्वारा हृदय तथा फेफड़ों में ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। इससे ध्वनि बार बार परावर्तन के द्वारा डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तीसरा, कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं, जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। यहाँ पर ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग को हम पढ़ रहे हैं, जहाँ लाउड स्पीकर, हॉर्न तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र में भी ध्वनि के परावर्तन का उपयोग होता है, ताकि उसका सही इस्तेमाल हम कर सकें। जैसे लाउड स्पीकर में ध्वनि के परावर्तन से ध्वनि जो है वो बहुत दूर तक और निश्चित दिशा में पहुंचाई जाती है। हॉर्न में भी ऐसा ही होता है, ध्वनि का परावर्तन बार बार करके उसको ठीक आगे की ओर भेजा जाता है, ताकि हॉर्न दूर तक सुनाई दे सके। शहनाई में भी ऐसा ही होता है। अगला उदाहरण स्टेथोस्कोप का है। आप अगर कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि डॉक्टर अपने गले में एक मशीन लटकाए रखते हैं और उसे कानों में लगाकर हमारे शरीर में हमारे नब्ज को चेक करते हैं। यह मशीन भी ध्वनि के परावर्तन पर ही काम करता है। इससे फेफड़ों तथा हृदय के ध्वनि को सुनना जा सकता है। इसके बाद कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतों को वक्राकार बनाकर ध्वनि का परावर्तन कराया जाता है, ताकि ध्वनि परावर्तन के बाद सभी जगह पर सामान्य रूप से पहुंच सके। अगर छतें वक्राकार न बनाई जाए तो परावर्तन से ध्वनि किसी एक ही दिशा में अधिक पहुंच जाएगी और किसी दूसरी दिशा में कम। अनुचित परावर्तन को रोकने के लिए साउंड एब्जर्वर का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ आप चित्र 11.7 में देख सकते हैं, बड़े हॉल में उपयोग किए जाने वाला ध्वनि पट वह किस प्रकार का होता है और ध्वनि उस पट से किस प्रकार से टकराकर सभी दिशाओं में जाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। श्रव्यता का परास, रेंज ऑफ हियरिंग। ध्वनि तरंगे आवृत्ति परास के अनुसार तीन प्रकार से विभक्त किया जाता है। पहला श्रव्य तरंगे, दूसरा अपश्रव्य तरंगे और तीसरा परास्रव्य तरंगे। अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला श्रव्य तरंगे, जिसे इंग्लिश में ऑडिबल साउंड कहते हैं, वे ध्वनि तरंगे जिन्हें हमारा कान सुन सकता है श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य होती है। ये निम्नतम तथा उच्चतम आवृत्तियों की श्रव्यता की सीमाएं कहलाती हैं। ये तरंगे कंपित वायु स्तंभ, स्वरित्र द्विभुज, वायलिन आदि से उत्पन्न होती हैं। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अब आगे अपश्रव्य तरंगे, जिसे इंग्लिश में इंफ्रासाउंड कहते हैं, वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों को सुना नहीं जा सकता है। ये तरंगे भूकंप के समय, ज्वालामुखी विस्फोट व वेल हाथी जैसे प्राणियों में उत्पन्न होती हैं। तो इंफ्रासाउंड वह तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम है। और इन्हें कौन उत्पन्न कर सकता है? इन्हें हाथी, वेल जैसे प्राणी उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर ये भूकंप के समय और ज्वालामुखी विस्फोट के समय भी उत्पन्न होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं परास्रव्य तरंगे, जिसे इंग्लिश में अल्ट्रासाउंड कहते हैं, वे ध्वनि जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज अर्थात 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है परास्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों को क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न कर सकते हैं चमगादड़, बिल्लियाँ, कुत्ते जैसे कुछ प्राणी, कुछ पक्षी तथा कीट भी परास्रव्य तरंगों का प्रयोग संकेत भेजने, समुद्र की गहराई ज्ञात करने, चिकित्सा के क्षेत्र में तथा हवाई अड्डों पर धुंध दूर करने में होता है। वायु में इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य 1.6 सेंटीमीटर से कम होती है। तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के बारे में बताया गया है कि अल्ट्रासाउंड वे ध्वनियाँ हैं इनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक है, और इन्हें चमगादड़, बिल्लियाँ और कुत्ते जैसे जीव जंतुओं के द्वारा उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, संकेत भेजने के लिए, समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए तथा अन्य बहुत सारी जगहों पर होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, किताब को देखिए, पराध्वनि के अनुप्रयोग, इंग्लिश में एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। पराध्वनियाँ उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें से कुछ निम्नवत हैं। पहला, पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक में उत्पन्न दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने में किया जाता है। इसमें पराध्वनि तरंगें धातु के ब्लॉक से गुजर जाती हैं और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाती हैं, जो ब्लॉक में दोष को दर्शाती हैं। दूसरा, पराध्वनि द्वारा उन वस्तुओं को साफ किया जाता है जिन तक पहुंचना कठिन होता है। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाली मार्जिन विलयन में रखकर पराध्वनियाँ तरंग भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। तीसरा, पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG कहते हैं। चौथा, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में भी पराध्वनि का उपयोग होता है। इसमें पराध्वनि तरंगों से रोगी के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है। इस तकनीक द्वारा ट्यूमर का पता लगाया जाता है। पांचवा, पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पत्थरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। बाद में ये कण मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। चमगादड़ अंधेरे में भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करके परावर्तन के पश्चात इनका संसूचन करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से टकराकर उनसे परावर्तित होकर चमगादड़ के कान तक पहुंचते हैं। इससे चमगादड़ जो देख नहीं सकती है वो अवरोध या कीट की स्थिति का पता लग जाता है। तो इस तरह से हमने पराध्वनि के कुछ अनुप्रयोग देखे, जैसे धातु के ब्लॉक में उत्पन्न दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने में पराध्वनि का उपयोग चिकित्सा के कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब हम आगे पढ़ते हैं सोनार के बारे में। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार शब्द का अंग्रेजी पर्याय है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कार्यविधि, सोनार में एक प्रेषित्र तथा एक संसूचक होता है और इसे चित्रानुसार किसी नाव या जहाज में लगाया जाता है। प्रेषित्र द्वारा उत्पन्न पराध्वनि तरंगें जल में गमन करती हैं तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। ध्वनि की चाल जल में तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है जिससे ध्वनि तरंग परावर्तित हुई है। माना पराध्वनि संकेत के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल टी है तथा समुद्री जल में ध्वनि की चाल भी है। तब यदि डी गहराई पर पिंड है तो सतह से पिंड और वापस जहाज तक तय की गई दूरी 2D होगी। तब 2D बराबर V × T। इसके लिए एक चित्र दिया गया है आपके किताब के पेज 136 में, चित्र 11.8, जहाँ पर वेव का समुद्र के तल तक जाना और किसी पिंड से टकराने के बाद पुनः नाव तक वापस आना दिखाया गया है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा सोनार होता क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं। किसी भी देश के जल सेना में सोनार का उपयोग बहुत ही अहम होता है। अब आगे पढ़ते हैं मानव कर्ण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। क्या आपने कभी सोचा कि आपके कान किस प्रकार से बने हैं, उनमें आवाज कहाँ जाती है, कान किसी आवाज को कैसे सुन पाते हैं? इसके बारे में हम अब जानकारी इकट्ठी करेंगे। हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। कान वायु माध्यम में संचरित ध्वनि में सुनने योग्य आवृत्तियों के संगत दाब परिवर्तनों की वायु संकेतों में बदलता है जो श्रवण तंत्रिका द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। कान की संरचना चित्र 11.9 में बताई गई है। बाहरी कान को कर्ण पल्लव कहते हैं। यह परिवेश से ध्वनि एकत्रित करके श्रवण नलिका को भेजता है। श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्ण पटल कहते हैं। ध्वनि के संपीड़न के कर्ण पटल पर पहुंचने से झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्ण पटल को अंदर की ओर दबाता है तथा विरलन के समय कर्ण पटल बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार कर्ण पटल कंपन करता है। मध्य कर्ण में स्थित 3 हड्डियां मुग्धरक, निहाई और वलयक इन कंपनों को कई गुना कर देते हैं। मध्यकर्ण इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचरित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त द्वारा दाब परिवर्तनों का विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इसकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। इसे समझने के लिए आप अपने किताब के चित्र 11.9 में कर्ण की संरचना को देखिए। जो बाहरी कान है वह तरंगों को कलेक्ट करके कान में एक पटल पर भेजता है जिसे कर्ण पटल कहते हैं। उस कर्ण पटल पर संपीड़न और विरलन जो घटनाएं होती हैं वह महसूस किया जाता है, जिसका सिग्नल मस्तिष्क तक कान के अंदर स्थित 3 हड्डियां पहुंचाती हैं और इस प्रकार हमें सुनाई देता है। जो संपीड़न और विरलन कर्ण पटल के बाद 3 हड्डियों से गुजरते हुए मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, उस संपीड़न और विरलन को मस्तिष्क ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। अब आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रडार। रडार एक वैज्ञानिक उपकरण है। रडार का आविष्कार टायलर व लियो यंग यूएसए ने वर्ष 1922 में किया था। यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। रडार एक यंत्र है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तु का पता लगाने में तथा उनकी स्थिति अर्थात दिशा और दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आंखों से जितनी दूर दिखाई पड़ सकता है रडार द्वारा उससे कहीं अधिक दूर की चीज़ों की स्थिति का सही पता लगाया जा सकता है। कोहरा, धुंध, वर्षा, हिमपात, धुआं अथवा अंधेरा, इनमें से कोई भी इसमें बाधक नहीं होते, किंतु रडार आँख की पूरी बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि इससे वस्तु के रंग तथा बनावट का सूक्ष्म ब्यौरा नहीं जाना जा सकता, केवल आकृति का आभास होता है। पृष्ठभूमि से विषम तथा बड़ी वस्तुओं का जैसे समुद्र पर तैरते जहाज, ऊंचे उड़ते वायुयान, द्वीप, सागर तट इत्यादि का रडार द्वारा बड़ी अच्छी तरह से पता लगाया जा सकता है। सन 1886 में रेडियो तरंगों के आविष्कर्ता हाइनरिख हेर्ट्ज ने ठोस वस्तुओं से इन तरंगों का परावर्तन होना सिद्ध किया था। रेडियो स्पंद पल्स के परावर्तन द्वारा परासन अर्थात दूरी का पता लगाने का कार्य सन 1925 में किया जा चुका था और सन 1939 तक रडार के सिद्धांत का प्रयोग करने वाले कई सफल उपकरणों का निर्माण हो चुका था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में ही रडार का प्रमुख रूप से उपयोग आरंभ हुआ। स्थिति निर्धारण की पद्धति। रडार से रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं और दूर की वस्तु से परावर्तित होकर उनके वापस आने में लगने वाले समय को नापा जाता है। रेडियो तरंगों की गति 186,999 मील प्रति सेकंड है, इसलिए समय ज्ञात होने पर परावर्तक वस्तु की दूरी सरलता से ज्ञात हो सकती है। रडार में लगे उच्च दिशापरक एंटीना से परावर्तक अर्थात लक्ष्य वस्तु की दिशा का ठीक ठाक पता चल जाता है। दूरी और दिशा मालूम हो जाने से वस्तु की यथार्थ स्थिति ज्ञात हो जाती है। रडार का प्रेषित नियमित अंतराल पर रेडियो ऊर्जा के क्षणिक किंतु तीव्र स्पंद भेजता रहता है। प्रेषित स्पंदों के अंतरालों के बीच के समय में रडार का ग्राही यदि बाहरी किसी वस्तु से परावर्तित होकर तरंगे आए तो उनको ग्रहण करता है। परावर्तन होकर वापस आने का समय विद्युत परिपथों द्वारा सही सही मालूम हो जाता है और समय के अनुपात में अंकित सूचक से दूरी तुरंत मालूम हो जाती है। 1 माइक्रोसेकेंड के समय से 164 गज और 19.75 माइक्रोसेकेंड से 1 मील की दूरी समझी जाती है। कुछ रडार 199 मील दूर तक की वस्तुओं का पता लगा लेते हैं। अच्छे यंत्रों से दूरी नापने में 15 गज से अधिक की भूल नहीं होती है और दूरी के कम या अधिक होने पर नाप की यथार्थता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लक्ष्य वस्तु की दिशा अथवा उसकी ऊंचाई का एक कोण एक अंश के 9.96 भाग तक परिशुद्ध नापा जा सकता है। रडार के ग्राही यंत्र की ऋणाग्र किरण नली में वस्तु की स्थिति स्पष्ट दिखाई पड़ती है। दिशा का ज्ञान, लक्ष्य का पता लगाने के लिए एंटीना को घुमाते या आगे पीछे करते हैं। जब एंटीना लक्ष्य की दिशा में होता है तब लक्ष्य का प्रतिरूप ऋणाग्र किरण नली के फलक पर प्रकट होता है। इस प्रतिरूप को पिप कहते हैं। पिप सबसे अधिक स्पष्ट तभी होता है जब एंटीना सीधे लक्ष्य की दिशा में होता है। रडार के एंटीना अत्युच्च दिशापरक होते हैं। ये रेडियो तरंगों को सक्रिय किरण पुंजों में एकाग्र करते हैं तथा यंत्र में लगे विशेष प्रकार के परावर्तक इन किरण पुंजों को सघन बनाते हैं। रडार के कार्य के लिए अति लघु तरंग धैर्य वाली अर्थात अत्युच्च आवृत्तियों की तरंगों का उपयोग किया जाता है। इन सूक्ष्म तरंगों के उत्पादन के लिए मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन नामक उपकरण आवश्यक है, जिसके बिना आधुनिक रडार का कार्य संभव नहीं है। रडार के अवयव, स्पंदक, रडार प्रेषित, प्रेषण ग्रहण स्विच, रडार ग्राही सूचक। अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर से रेडियो आवृत्ति तुलित्र को दिए जाने वाली विद्युत शक्ति के आवश्यक विस्फोट प्राप्त होते हैं। रेडियो आवृत्ति दोलित्र उच्च आवृत्ति वाली शक्ति के उन स्पंदों को उत्पन्न करता है जिनसे रडार के संकेत बनते हैं। एंटीना द्वारा ये स्पंद आकाश में भेजे जाते हैं और एंटीना ही उन्हें वापसी में ग्रहण करता है। ग्राही वापस आने वाली रेडियो तरंगों का पता पाता है। सूचक रडार परिचारक को रेडियो तरंगों द्वारा एकत्रित की गई सूचनाएं देता है। तुल्यकालन तथा परास की माप के अनिवार्य कृत मॉड्यूलेटर तथा सूचक द्वारा संपन्न होते हैं। यूं तो जिस विशेष कार्य के लिए रडार यंत्र का उपयोग किया जाने वाले हैं उसके अनुरूप इसके प्रमुख अवयवों को भी बदलना आवश्यक होता है। रडार के उपयोग, रडार के कारण युद्ध में सहसा आक्रमण प्रायः असंभव हो गया है। इसके द्वारा जहाजों, वायुयानों और रॉकेटों के आने की पूर्व सूचना मिल जाती है। वायुयानों पर भी रडार यंत्रों के आगंतुक वायुयानों का पता चलता रहता है तथा इन यंत्रों की सहायता से आक्रमणकारी विमान लक्ष्य तक जाने और अपने स्थान तक वापस आने में सफल होते हैं। केंद्रीय नियंत्रक स्थान से रडार के द्वारा 299 मील के व्यास में चतुर्दिक ऊपर और नीचे आकाश में क्या हो रहा है इसका पता लगाया जा सकता है। रात्रि या दिन में समुद्र के ऊपर निकली नौकाओं का या आते जाते जहाजों का पता चल जाता है तथा दुश्मन के जहाजों पर तोपों का सही निशाने लगाने में भी इससे सहायता मिलती है। शांति के समय में भी रडार के अनेक उपयोग हैं। इसने नौका, जहाज या वायुयान चालन को अधिक सुरक्षित बना दिया है क्योंकि इसके द्वारा चालकों को दूर स्थित पहाड़ों, हिमशैलों अथवा अन्य रुकावटों का पता चल जाता है। रडार से वायुयानों को पृथ्वी तल से अपनी सही ऊंचाई ज्ञात होती रहती है तथा रात्रि में हवाई अड्डों पर उतरने में बड़ी सहूलियत होती है। 19 जनवरी 1946 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिक दल ने रडार द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा से संपर्क स्थापित किया। रेडियो संकेत को चंद्रमा तक आने जाने में 4,59,999 मील की यात्रा करनी पड़ी और 2.4 सेकंड समय लगा। तो इस तरह हमने रडार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। सबसे पहले रडार क्या होता है हमने इसके बारे में जाना। रडार को सबसे पहले किसने बनाया था और रडार का आविष्कार किसने किया था यह भी जाना। उसके बाद स्थिति निर्धारण की पद्धति में रडार का उपयोग तथा रडार के अवयवों के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की, जहां हमने मॉड्यूलेटर, इंडिकेटर, ग्राही, तुल्यकालन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ा। फिर रडार के उपयोग को भी हमने पढ़ा। वर्तमान स्थिति में रडार बहुत ही उपयोगी है और यह किस प्रकार से है इस प्रश्न का उत्तर अब आप जरूर दे पाएंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ते हैं। पहला, किसी कण की वह गति जो एक निश्चित समय के बाद बार बार दोहराई जाती है आवर्ती गति कहलाती है। दूसरा, किसी कण द्वारा सरल रेखा में एक निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्ती गति हो रही हो तो यह गति कंपित गति या दोलनी गति कहलाती है। तीसरा, माध्यम में कणों के कंपनों के अनुसार तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें। चौथा, ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती हैं तथा ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। पाँच, ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचरित होती हैं। छः, ध्वनि तरंगों में दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। सातवां, तरंग द्वारा माध्यम के विक्षोभ के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। आठवां, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं, म्यू बराबर एक बटा टी। नौ, तरंग की चाल उसकी आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात फी बराबर न्यू लैम्डा। दस, किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ग्यारह, ध्वनि की चाल मुख्यतः संचरित होने वाली माध्यम की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करती है। बारह, ध्वनि के आपतित होने की दिशा तथा परिवर्तित होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब के समान कोण बनाते हैं और तीनों एक ही तल में होते हैं। तेरह, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि एवं परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। चौदह, ध्वनि के तीन गुण होते हैं, पहला तारत्व, दूसरा प्रबलता, तीसरा गुणता। पंद्रह, मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि का परास 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज होता है। सोलह, 20 हर्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अपश्रव्य ध्वनि तथा 20 किलो हर्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। सत्रह, पराध्वनि के चिकित्सा तथा प्रौद्योगिक क्षेत्रों में अनेक उपयोग हैं। अठारह, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग समुद्र की गहराई नापने, समुद्र की गहराई में किसी अदृश्य वस्तु की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। उन्नीस, सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। बीस, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं तथा अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। 21. रडार का उपयोग अंतरिक्ष में आने जाने वाली वायुयानों के संसूचन एवं उनकी स्थिति ज्ञात करने में काम आता है। अब हम अभ्यासार्थ प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन है कहलाती है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। दूसरा प्रश्न, तरंग के वेग भी तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा आवृत्ति न्यू के बीच संबंध है, यह भी हम जानते हैं। तीन, अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं, इसके बारे में पढ़ा है। चौथा प्रश्न, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन। पांचवा प्रश्न, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है कहाँ, ठोस में, जल में या वायु में। छठा प्रश्न, खड़ी की सुइयों में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है, एक घंटा, 24 घंटा, 12 घंटा या इनमें से कोई नहीं। सातवां प्रश्न, एक तरंग की चाल 350 मीटर पर सेकेंड तथा तरंग दैर्ध्य 50 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति होगी, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है। आठवां प्रश्न, प्रति सेकंड समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को कहते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। नौवां प्रश्न, कंपन करती एक वस्तु का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, वस्तु के कंपन की आवृत्ति होगी। दसवां प्रश्न, घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल होता है। ग्यारहवां प्रश्न, श्रव्यता सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यह सब हमने पढ़ा है। बारहवां प्रश्न, प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारे कान तक ध्वनि कम से कम कितने समय बाद पहुंचनी चाहिए, 0.1 सेकंड, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। तेरहवां प्रश्न, अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे की आवृत्ति है, सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड के लिए यूज होता है, इसके बारे में भी हम पढ़े हैं। चौदहवां प्रश्न, आयाम का मात्रक है, हमने इसके बारे में भी पढ़ा है। और पंद्रहवां प्रश्न, ध्वनि की निर्वात में चाल होती है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, यह भी हम जानते हैं। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न और उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न और आंकिक प्रश्न दिए गए हैं, जिसे आप स्वयं हल करने की कोशिश करें। मैं स्वप्निल विवेक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।